कराते क्लास चल रहा था 30/3/1967 पहले पेज की दूसरी लाइन में बात चल रही थी जो आत्मा भाग्यशाली बनती है या कोई आत्मा दुर्भाग्यशाली बनती है। तो उसका मूल कारण कहाँ से आता है? मूल कारण लिखा भी है भाई, वेदवाणी में लिख दिया, बोल दिया भाई ये भाग्यशाली रहते है। भाग्यशाली रहते भाग्य बनाने या दुर्भाग्य बनाने का कारण कैसे है? 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 क्या करूं?
कर्म
है,
कर्म का ही फल।
कर्म कौन से खाता है? कर्म अकर्म विकर्म, ये प्रैक्टिकल में सिखाने वाला कौन है? हैं? शिव बाप। शिव बाप तो थ्योरी का ज्ञान देता है, निराकार आत्माओं का निराकार बाप है। निराकार बाप से निराकारी ज्ञान का वर्षा मिलता है। ज्ञान सिर्फ थ्योरी में चाहिए या प्रैक्टिकल जीवन में भी चाहिए? तो किससे मिलता है? शिव बाबा जिसे हम कहते हैं उसके लिए गीता में भी लिखा है, भगवान ने अर्जुन से बोला, हे अर्जुन इदम शरीरम, ये शरीर कौन थे? क्षेत्रम इत्यभिधीयते, ये जो तेरा शरीर है ये क्षेत्र है, जो गीता के पहले अध्याय में आया, पहले श्लोक में आया, क्या धर्म क्षेत्र, ये धर्म का क्षेत्र है। क्षेत्र माने युद्ध भूमि, खेत जिसमें लड़ाई लड़ी जाती है। धर्म का क्षेत्र है, युद्ध का क्षेत्र है और अनेक धर्मों का युद्ध क्षेत्र है। इस धर्म क्षेत्र में हर एक युद्धवित्ता योद्धा अपने को तन से, मन से, धन से, कुछ न कुछ परसेंटेज में स्वाहा जरूर करता है। कौन कौन सा योद्धा? जो बोला सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज, सब धर्मों को, उन धर्म के धर्मपिताओं को, धर्म के प्रणेताओं को त्याग दे, परित्यज्य माम एकम शरणम भज, मुझे एक की शरण में आ जा। किसे एक की शरण में आ जा? जो दुनिया में और धर्म फैले हुए हैं, वो सब धर्म असत्य हैं। इस दुनिया में सत धर्म एक ही है। देवी देवता सनातन सत धर्म, सत माने सच्चा। सच्चा किसे कहें? सच्चे और झूठे की पहचान क्या है? गीता में भी बताया, ना सते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। जो सत्य होता है उसकी पहचान है। इस दुनिया में वो सत्य कभी लोप नहीं होता। जो असत्य है वो लुप्त हो जाता है। माने झूठा बाप खड़ा होता है और सच्चा अटल रहता है। सत धर्म है तो किसके द्वारा स्थापन किया हुआ होगा? अरे किसी धर्म है? क्राइस्ट के द्वारा स्थापन हुआ। बुद्ध धर्म है? बौद्ध धर्म के द्वारा स्थापन हुआ। तो जो सत धर्म है, सनातन धर्म है, वो किसके द्वारा स्थापन हुआ? सत्य के द्वारा स्थापन हुआ या झूठ के द्वारा स्थापन हुआ? और जिस सत्य ने इस सद्धर्म की स्थापना की, वो सच्चा धर्म पिता होगा या झूठा धर्म पिता होगा? क्योंकि और धर्म पिताएं तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बीच में आते हैं और बीच में ही चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि सदा सत्य है ही नहीं, इसलिए उनको भाग खड़ा होना पड़ता है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच से भाग खड़ा होना पड़ता है। और भी हिस्ट्री में देखा जाए तो इस दुनिया में एक ही सद्धर्म है और एक ही धर्मखंड है सच्चा। जहां ये सद्धर्म स्थापन होता है
के द्वारा।
सद्धर्म खंड का भी कभी विनाश नहीं होता, झूठे धर्म खंडों का विनाश हो जाता है। ये झूठे झूठे विधर्मी धर्म खंड, विदेशी धर्म खंड पहले भी नहीं थे, 2,500 वर्ष से पहले इनके धर्म पिताएं भी नहीं थे, धर्म खंड भी नहीं थे। न सृष्टि के आदि में थे, न अंत तक रहेंगे। एक भारत खंड ये है जो सच्चे धर्म पिता के द्वारा स्थापन होता है, और वो धर्म पिता सत्य कैसे है? अभी बताया क्या पहचान सच्चे की, कभी उसका नाश नहीं होता। वो कौन सा धर्म पिता है? जिसका कभी नाश ही नहीं होता, ऐसा कोई दुनिया में है? इसे सृष्टि का विनाश हो, और धर्म पिता का विनाश न हो। सारी दुनिया नाशवान और एक अविनाशी, जिसको कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। तो सच रूपी रंगमंच पर वो कौन है जो तीनों काल में विद्यमान रहता है? वेद वाणी में बताया, क्या बताया? ब्रह्म वाक्य मुरली में बताया है, बताया इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है, सदा कायम एक ही शिव बाबा है। और जो एक शिव बाबा सदा कायम है वो ही सदा सत्य है। क्यों? शिव बाप सदा कायम नहीं है, है? आत्माओं का बाप सदा कायम नहीं है, है? अरे सदा कायम नहीं है, सिर्फ संगम पर ही आता है। बाकी चार योगों में न दर्द होता ही नहीं। तो क्या सन्यासी है या प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है? हैं? प्रवृत्ति का पक्का है, निराकार आत्माओं का बाप। हाँ? निराकार आत्माओं का बाप प्रवृत्ति का पक्का है। निराकार आत्माओं को पुरुष कहा जाता है, पुरु माने शरीर, शा माने शयन करने वाला। जो शरीर रूपी पुरी में शयन करते हैं, आराम करते हैं, उनको कहा जाता है पुरुष। और इस सृष्टि के सभी मनुष्य आत्माएं जब जीवन मुक्ति प्राप्त करते हैं, जीवन में रहने वाले बाप से, तो उस जीवन मुक्ति के टाइम पर कम से कम एक जन्म के लिए शरीर रूपी पुरी में आराम से नहीं रहते। इसलिए पुरुष कहे जाते हैं। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है, सब पुरुष हैं। तो अब्बल नंबर पुरुष हैं या नंबरवार पुरुष हैं? है नंबरवार पुरुष हैं। कोई तो ऑलराउंड सृष्टि रूपी रंगमंच पर शरीर रूपी पुरी में रहते रहते सिर्फ बहुत थोड़े समय के लिए या कहें संगम में ही अंतिम जन्म में जिसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म कहा जाता है, मना उस जन्म में ही आधे समय तक बेआरएम में रहते और आधा समय आराम से रहते। तो बाकी क्या कहें, 84 जन्म आराम से रहेंगे या बेआराम में रहेंगे? आराम से रहते हैं। उनमें भी नंबर बार होंगे कि एक जैसे होंगे? नंबर बार होंगे, क्योंकि वो इस सच रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने वाली आत्माओं के बीच जो परम पुरुष है, कौन? शिव बाप, परे ते परे स्टेज में रहने वाला बाप, जिसका कोई बाप नहीं, वो परम पुरुष 100% शरीर रूपी पुरी में रहते सौ परसेंट आराम का पार्ट बजाता है, कभी भी बेआरामी अनुभव नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक परम पुरुष के अलावा और कोई मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं है जो सदा काल शरीर रूपी पुरी में रहते रहते आराम से रहे, सदा काल। कोई है? शिव बाबा किसने कहा? शिव बाबा जिसे कहा जाता है, वो आत्मा जो इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर सदा काल रहती है, वो बेआरामी का पाठ नहीं बजाती कभी। हैं? तो क्यों कह दिया एक शिव बाबा सदा आराम में रहने का पाठ बजाता है? बजाता है या नहीं? है? नहीं बजाता, क्योंकि वेदवाणी है, ब्रह्मवाक्य मुरली में ही बोला है। क्या भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया? कौन रुलाया? हाथ को कौन पूछ रहा है? हाथ उठाओ, आप कह रहे हैं, आपकी तो आरती उतारनी चाहिए। अस्सी साल हो गए बताते बताते कि जीवन में ऐसे चलना है और ऐसे नहीं चलना है। एक भी मनुष्य आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अभी वर्तमान में ऐसी है जो छाती ठोक करके कहे कि हम जैसे जैसे बताया वैसे ही हम इस जन्म में चलते रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं। कोई है? अरे आरती कैसे उतारेंगे? हैं?
भगवान थोड़ी ना रोएगा।
हैं?
वो क्यों रोएगा?
हैं?
भगवान क्यों रोता है?
मना, ये महावाक्य किसका है? कौन सी आत्मा का महावाक्य है कि भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया? इस महावाक्य का विरोध करने वाला कि ये कैसे हो सकता है कि भगवान रोए? किंतु बोला है, महावाक्य है, श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय समझो। क्या कहते हैं? ये कैसे हो सकता है? मना, नहीं हो सकता।
भगवान है ना? है? भगवान है वो।
भगवान का अर्थ क्या है? धनवान का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? अरे धनवान माने धनवाला, भगवान माने भगवाला। क्या भग शब्द है? भाग्य नहीं है, क्योंकि भग ही अगर भाग्य बनाने वाला है तो जो 16,000 गोप गोपियां गाये हुए हैं, राजयोग सीखने वाले राज परिवार की सदस्य आत्माएं, उनमें से कोई भी दास दासी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो सभी भाग्य बनाने वाली हैं या भाग्य बिगाड़ने वाली हैं? तो जो भाग्य बनाने वाली हैं, उनका खुद का भाग्य दास दासी बनने का होना चाहिए। इसका मतलब वो 16,000 सारी की सारी आत्माएं कोई का भाग्य नहीं बना सकते। सभी का भाग्य बनाने वाली, 500-700 करोड़ का भाग्य बनाने वाली एक ही होगी। क्या है? ब्रह्मा का पुत्र या फॉलोअर ब्राह्मण, बग के पीछे भागने वाला भाग्यशाली। तो क्या 16,000 हैं भाग्य बनाने वाली? कि एक ही है भाग्य बनाने वाली 100%? कौन है? अरे मैं देखे कि बाप बाप को भग होती है अरे कुछ तो शब्दों को सोच के बोलो ना शब्दों का अर्थ होता है
प्रैक्टिकल में उसके द्वारा होता है
क्या होता है
शिव भक्त तो डायरेक्शन देता है
क्या देता है
मनुष्य शक्ति के बात को
हाँ देता है तो
उसके द्वारा ही तो होता है
क्या होता है
अन्य मनुष्यों का
क्या होता है अरे अरे बताओ ना क्या होता है मना भाग्य बनाना और भाग्य बिगाड़ना भाग्य प्रवृत्ति में बनता है या निवृत्ति में बनता है जिनका भाग्य बनता है वो सुखी होते हैं प्रवृत्ति वाले आज संसार के प्राणी मात्र प्रवृत्ति में होते हैं तो सुख भोगते हैं या सन्यासी सुख भोगते हैं है? प्राणी मात्र देवताएं हो मनुष्यों राक्षसों पशु हो पक्षी हो पतंगे हो कीड़े मकोड़े हो प्रवृत्ति में आएंगे तो सुख भोगेंगे या निवृत्ति में रहेंगे तो सुख भोगेंगे तो किसकी बात कर रहे हैं दोनों एक समान बनते तो हैं वो तो बोला आत्मा भाग्यशाली बनती है ना तो अपने कर्म से बनेगी या कोई कर्म को बनाने में सहयोगी बनेगा करना तो अपने आप पड़ेगा ना प्रैक्टिकल खुद करेगा तब बनेगा या बिना किए बनेगा खुद करेगा तो शिव है निराकार निराकारी ज्ञान का वर्षा देने वाला बाप ऊंचे से ऊंचा बाप उससे ऊंचा वर्षा कोई नहीं दे सकता क्यों हाँ अफूट ज्ञान का भंडार तो है लेकिन गीता में भी लिखा है नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यही विद्यते कि माने इस संसार में एक ही चीज ऐसी है जिसके मुकाबले पवित्र कुछ भी नहीं है क्या ईश्वरीय ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान भी नहीं परमेश्वर का ज्ञान क्या ईश माने शासन करना ईश्वर माने शासन करना और वर माने श्रेष्ठ शासन करता तो श्रेष्ठ शासन करना करने वाले तो बहुत हुए हैं लेकिन ऐसा शासन करना परमेश्वर परे ते परे ईश्वर जो इस सृष्टि पर आता तो है मिलिट्री और पुलिस के द्वारा शासन नहीं करता है नहीं करता बताता है स्वतंत्र हो स्वतंत्र रहने दो। कैसे? स्वधर्मेन धनम से स्व माने आत्मा, आत्मा के धर्म में रहते हुए, आत्मा की स्मृति में रहते हुए मृत्यु भी हो जाए तो भी श्रेष्ठ है। पर धर्म वो भयावह, पर माना पांच तत्वों से बनी हुई प्रकृति के ये शरीर, ये प्रकृति ही पर धर्म है। जो पांच तत्वों से शरीर का निर्माण करती है, तो ये शरीर जो पांच तत्वों का पुतला है, ये देह कहा जाता है। माना परधर्मो भाव है, माने जो भी देहधारी धर्म पिताए हुए हैं उन सब के धर्म कैसे हैं? भयावह, भय पैदा करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इन धर्म पिताओं के धर्म में जो भी प्रभावित हो गए भारतवासी, तो प्रभावित होने के बाद क्या बनते हैं? प्रजा बन जाते हैं। और उनकी प्रजा बनने के बाद वो अपने धर्म में ले जा करके उन भारतवासियों को कन्वर्ट करके दास दासी बना के रखेंगे या रानी महारानी बना के रखेंगे? दास दासी बना के रखेंगे। ये दास दासी का कर्म जो है ना, ये तो बड़ा दुखदायी है। क्या सबसे दुखदायी धर्म कौन सा है? दास दासी बनना, माने सोटे खाते जाओ, पिटाई पिटते जाओ, और न चाहते हुए भी जैसा चलाने वाला सोटाधारी चलाता है वैसे ही करते जाओ। मिसाल के तौर पर अभी भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश करती हैं, कौन बनते हैं देह भूत प्रेत?
जिनके पास जाता
है,
जिनके पास जाता
है। पाप क्यों ज्यादा होते हैं? पुण्य क्यों नहीं ज्यादा होते हैं? क्यों भी कर्म करते हैं? अरे विपरीत कर्म क्यों करते हैं? विकर्म है, देह अभिमान के कारण विपरीत कर्म करते हैं। तो क्या उनको आत्माओं के बाप परमपिता सुप्रीम गॉडफादर ने कहा था कि तुम देह हो, देह के आधार पर कर्म करो, देह अभिमानी बनकर कर्म करो, देह के अहंकार में रहकर कर्म करो? सुप्रीम सोल गॉडफादर ने कहा था क्या? नहीं कहा था ना। फिर किसको कहा था? अरे किसी को कहा था या नहीं कहा था? सुप्रीम गॉड फादर ने किसी को तो कहा होगा कि आत्मिक स्थिति में रहकर कर्म करो, देह भान में रहकर कर्म न करो। देहभान में अपने को देह समझते हुए कर्म करेंगे, देह अहंकार में रहकर कर्म करेंगे तो विकर्म जरूर बनेगा, विपरीत कर्म माने पाप कर्म बन जाएगा। चलो, आत्माओं के बाप सुप्रीम गॉड फादर ने नहीं कहा, भूत प्रेत बनने वालों को, तो फिर किसने कहा? है धर्मगुरुओं ने कहा। धर्मगुरुओं को किसने कहा? अरे धर्मगुरुओं को भी तो किसी ने कहा होगा, धर्म पिताओं को कोई ने तो कहा होगा। है
धर्मगुरुओं का बात, कम भक्ति करेंगे तो कम ज्ञान उठाएंगे,
है
धारणा भी कम करेंगे तो
क्या करेंगे,
कम भक्ति कम ज्ञान भी कम, तो धारणा भी कम तो आगे चले जाकर दुख होंगे, तुम देंगे।
भक्ति भागने वाले करते हैं,
दुर्गति के लिए
भक्ति भागने वाले करते हैं कि ठहरने वाले करते हैं? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम, युद्ध क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, क्या धर्म क्षेत्र है, धर्म करने की युद्ध भूमि है, और अविनाशी ज्ञान यज्ञ कुंड है। क्या है? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड। ऐसा रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड है जिसका कभी विनाश होने वाला नहीं। दुनिया का विनाश हो जाएगा फिर भी ये यज्ञ कुंड चलता ही रहेगा। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है, प्राणी मात्र अपना शरीर छोड़ देंगे फिर भी ये यज्ञ कुंड चलता रहेगा। तो कौन सा हुआ यज्ञ कुंड? जिस यज्ञ कुंड में 7 स्वाहा होना है वो यज्ञ कुंड स्वाहा नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, वो अविनाशी है। उस यज्ञ कुंड का, यज्ञ का नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव नहीं, शिव ज्ञान यज्ञ नहीं, क्या गीता ज्ञान यज्ञ नहीं, क्योंकि गीता तो माता है, है या नहीं? तो माता जब बोला गया तो माता तो तभी बनती है जब कोई पति हो, बिना पति के माता बनती है, है? तो गीता माता भी नहीं कह सकते क्योंकि गीता पति भगवान गाया हुआ है। ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ कुंड, विष्णु ज्ञान यज्ञ कुंड नहीं कहा जाता, शंकर ज्ञान यज्ञ कुंड भी नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता शंकर ज्ञान यज्ञ कुंड? क्योंकि शंकर भी पुरुषार्थी है। क्या ऐसा रौद्र रूप नहीं धारण कर सकता जिसमें सारी पापी दुनिया स्वाहा हो जाए? सब झूठे स्वाहा हो जाए, एक ही सत्य बचेगा जिसे कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। सत्य सदा काल होता है और झूठ अल्पकाल का होता है। तो सवाल है कि शिव भी नहीं, ब्रह्मा भी नहीं, विष्णु भी नहीं, शंकर भी नहीं, तो तो फिर है कौन? है
मनुष्य
शक्ति का बाप तो 500-700 करोड़ प्रजा जो कलयुग के अंत में होती है तमोप्रधान, उसका बाप प्रजापिता है, वो तो तमोप्रधान है। हाँ, तो शंकर नहीं है, शंकर पुरुषार्थी है। वो पुरुषार्थी, शंकर का पुरुषार्थ जब संपन्न होता है तो वो रौद्र रूप धारण करता है। इसलिए बार बार मुरली में बोला, ब्रह्मवाक्य बोल दिया। क्या है? क्या बोला? क्या बोला है? शंकर को फॉलो नहीं करना है, ब्रह्मा को फॉलो करना है। और ब्रह्मा तो चार, चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा गाए हुए, तो क्या चार पांच को फॉलो करना है? है? इसको फॉलो करना है, अव्वल नंबर को फॉलो करना है, वही अव्वल नंबर जो गाया हुआ है, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये किसको झुकाना है? बुद्धि रूपी आत्मा किसके सामने झुकानी है? परम ब्रह्म के सामने झुकानी है। ये परम ब्रह्म कौन है? है? बाबा? बाबा तो ग्रैंडफादर को बताया। शिव बाप? बाप है कि परम ब्रह्म माने बड़ी अम्मा है, ब्रह्म माने बड़ी माँ माने माँ। शिव बाप अम्मा है, बाप है, बाप है लेकिन अम्मा नहीं, परम पुरुष है। तो जो भी पुरुष मात्र हैं इस संसार में, वो पौरुषवान होते हैं तो पुरुष कहे जाते हैं, और वो पौरुष उनमें तब आता है जब बच्चा बुद्धि से नौजवान बनते हैं। क्या? पुरुष परिपूर्ण बनता है, अधूरा नहीं। जो परम पुरुष है वो त्रिकालदर्शी है। क्या? कितने काल का गया था? भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञाता। तो वर्तमान का ज्ञाता हो जाए 100%, भविष्य का ज्ञाता हो जाए 99%, और भूतकाल का 99% ज्ञाता हो जाए, तो त्रिकालदर्शी कहेंगे? नहीं कहेंगे। परिपूर्णता की एक अवधि जरूर आती है। क्या? परिपक्वता की एक अवधि जरूर आती है, और जो परिपूर्णता की परिपक्वता की अवधि आती है तो परम पुरुष भी अपने को रोक नहीं सकता। क्या वो भी नहीं रोक सकता? जो भी नौजवान परिपक्व बनता है उसके अंदर जो शक्ति समा जाती है उसको वो खुद धारण नहीं कर सकता। इसलिए धारण करने वाली माता चाहिए। देवताओं में, मनुष्यों में, राक्षसों में, कोई भी प्राणियों में जो पुरुष रूप में होते हैं उनमें कोई ऐसा है जो जीवन भर अपने मेल स्वरूप अर्थात पुरुषत्व को धारण करके रखे? कोई ऐसा हुआ है? प्राणियों को बात छोड़ दो, मनुष्यों की बात ले लो। शंकराचार्य स्त्री में बड़े से बड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला जो पौरुष शक्ति है उसको बड़े से बड़ा धारण करने वाला माना जाता है। उससे बड़ा कोई है? है इस संसार में कोई है? अरे है या नहीं? कौन है? है शिव? उसको तो शरीर ही नहीं है, है? मनुष्य सृष्टि का बाप तो शंकराचार्य धर्म पिताओं का भी बाप है। शंकराचार्य जैसे जितने भी धर्म पिताए हैं देह अभिमानी उन सब का भी बाप है। माना ये धर्म पिताए तो ग्रेट फादर्स हैं, गाए जाते हैं, लेकिन ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं गाए जाते। वो कौन है? बाबा जिसे कहा जाता है, शिव बाप। अरे शिव बाप आत्माओं का बाप है या ग्रैंडफादर है? वो सिर्फ आत्माओं का बाप है, दूसरा कोई संबंध हो ही नहीं सकता। दूसरे संबंध तब बनते हैं जब साकार शरीर में प्रवेश करता है, तब ढेर के ढेर संबंध बन जाते हैं। जैसा काम वैसे नाम पड़ जाते हैं। तो वो तो सिर्फ बाप है। कौन? शिव बाप आत्माओं का बाप, बापों का बाप, जिसका कोई बाप है ही नहीं। उसकी परिपक्वता तब होती है जब भूतकाल भी परिपक्व बुद्धि में आ जाए और भविष्यकाल भी 100% बुद्धि में आ जाए। तो भविष्य जब पूरा होगा 5000 वर्ष का कल्प पूरा होगा तभी तो तीनों काल पूरे बुद्धि में आएंगे, तब त्रिकालदर्शी कहा जाता है। माना तीनों काल का जो ज्ञान है परिपक्व ज्ञान अखूट ज्ञान समा गया उस बुद्धि रूपी आत्मा में, फिर वो उसको तलक हो जाती है।
क्या?
कोई नौजवान को जैसे तलक होती है, ऐसे तलक हो जाती है और वो अपने को संभाल नहीं पाता, ठहरा नहीं पाता। क्या? मैं जाऊं कहां जाऊं? है पुरुष को क्या चाहिए? पुरुष को प्रकृति चाहिए। क्या? परम पुरुष को परम प्रकृति चाहिए। प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। तो वो परम पुरुष इस सृष्टि की ओर जब आता है तो आशिक बनकर आता है या माशूक बनकर आता है? क्योंकि आशिक ही माशूक के पीछे भागता है। तो किसको माशूक बनाता है? है नहीं, तो पहले से परम ब्रह्म नहीं होता। जिसको माशूक बनाता है वो उसी आत्मा को माशूक बनाता है जो इस मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्टधारी है, सदा सत्य है। क्या वो क्या है? है? अरे वो सत्य है या नहीं है? सत्य है। तो जो जैसा होगा वैसा ही साथी चुनेगा ना? हाँ? चींटी हाथी को साथी चुनेगी? नहीं चुनेगी। तो वो सदा सत्य है। इस सृष्टि पर भी जब आता है तो उस सदा सत्य के पास जो सत्व है, जो सार है, शक्ति है बड़े से बड़ी, उस शक्ति को तिरोहित करने के लिए ऐसे का ही आधार लेता है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा सत्यता का पार्ट बजाने वाला है। ऑलराउंड पार्टधारी है। सदा सत्य का मतलब कभी भी झूठा पार्ट नहीं बजाता। वाइब्रेशन से भी झूठा पार्ट नहीं, दृष्टि से भी झूठा पार्ट नहीं, जो अच्छी अच्छी आत्माएं हैं, अच्छा कर्म करने वाली, उनको टेढ़ी नजर से देखे, घृणा की नजर से देखे। वाचा से भी गलत पार्ट बजाने वाला नहीं, ज्ञानेंद्रियों से भी गलत पार्ट बजाने वाला नहीं, सच्चा पार्ट धारी। और कर्मेंद्रियों से भी सच्चा पार्ट धारी। सच्चा पार्ट धारी माने है? सच्चा का मतलब क्या? कर्म इंद्रियों से कोई के ऊपर बाहुबल के आधार पर पार्ट नहीं प्ले करता। कर्म इंद्रियों से बाहुबल के आधार पर, देह का बल होता है ना कर्म इंद्रियों में, उस बाहुबल के आधार पर कर्म इंद्रियों का सुख नहीं लेता। चाहे वो प्रबलतम काम इंद्रिय क्यों न हो, कीचक का पाठ नहीं बजा सकता। एक जन्म की बात नहीं है, एक युग की बात नहीं है कि सतयुग में ऐसा पाठ बजाता होगा। नहीं, सत्य युग हो, त्रेता युग हो, द्वैतवादी द्वापर युग हो या कल युग हो, हर युग में 84वें जन्म की परिपक्वता आने तक, जिसे कहते हैं वानप्रस्थ स्टेज, तब तक भी वो किसी के साथ गलत पार्ट नहीं बजा सकता, क्योंकि नियम क्या है सृष्टि का, जो आदि सो अंत, उसका आदि में ऊंचे से ऊंचा पार्ट क्या है, वो ऊंचे से ऊंचा परम पदधारी कौन है, विष्णु, नो विषयताल। विष्णु की भुजाओं को विष्णु नहीं कहा जाता, भुजाएं तो सहयोगी होती हैं, भुजाएं लेफ्टिस्ट भी होती हैं और भुजाएं राइटियस कर्म करने वाली भी होती हैं। जो गायन है, दान धर्म कौन से हाथ से करना चाहिए, राइट हैंड से, और जो गंदे काम हैं, कचरा उठाने के, वो कौन से हाथ से करना चाहिए, है लेफ्ट हैंड से करना चाहिए। तो जो इस सृष्टि पर परम पदधारी है विष्णु, उसकी दो भुजाएं हैं, राइटियस के रूप में भी दो भुजाएं और लेफ्टिस के रूप में भी दो भुजाएं। जो राइटियस के रूप में दो भुजाएं हैं, उन भुजाओं में कौन कौन है, जिसे छोटी माँ कहा जाता है, क्या क्या कहते हैं, छोटी माँ, मुरली में भी बताई दिया, ये ब्रह्मा तुम्हारी बड़ी माँ है या छोटी माँ है, बड़ी माँ, फिर छोटी माँ कौन, ओम राधे मम्मा, सरस्वती जगदम्बा। तो वो छोटी माँ जब बच्चे, बाप के स्पेशल बच्चे एडवांस ज्ञान लेते हैं, तो वो एडवांस ज्ञान लेने वालों ब्राह्मणों की अलग दुनिया बन जाती है, और दुनिया में लेफ्टिस्ट का पार्ट बजाने वाला बड़े से बड़ा कौन है, कौन सा हाथ बुझा है, अरे हाँ, जगदम्बा का तामसी रूप क्या, महाकाली, कलयुग के अंत में सारे असुर बन जाते हैं। असुर संगारणी गाई हुई है। संगार होता है, सबकी देहों का विनाश होता है तो खुश होते हैं या दुखी होते हैं? हैं? क्या होते हैं? दुखी होते हैं। नंबर बार तो सबका गला काटने वाली है, माना देवान को अलग करने वाली है, आत्मा को अलग करने वाली है। देवान नष्ट होता है, देह पांच तत्वों का संघात, पांच तत्वों में मिल जाती है, और ये आत्मा आत्मा में मिल जाती है। परमात्मा जिसे कहा जाता है, उसे परमात्मा कहो, परम पदधारी कहो, विष्णु कहो, एक ही बात जो गीता में बोला है, तीन प्रकार की आत्माएं हैं इस संसार में पार्ट बजाने वाली। एक है अक्षर, क्या कभी क्षरित न होने वाली, और दूसरी है क्षर, क्षरित होने वाली। आत्मिक शक्ति से भी क्षरित होने वाली, देह और देह की इंद्रियों से भी क्षरित होने वाली, पतित बनने वाली। परंतु गीता में बताया एक तीसरी प्रकार की और श्रेष्ठ आत्मा है, परमात्मा इति उदाहरत है, जिसे परमात्मा कहा जाता है। क्या पार्ट बजाने वाली रंगमंच पर जो भी आत्माएं हैं, चारों युगों में और शूटिंग पीरियड में तो है ही है, उन आत्माओं के बीच एक ऐसी आत्मा भी है जो निराकार बाप का निराकारी ज्ञान जो बोला है कि वो निराकारी बाप आत्माओं का बाप अखूट ज्ञान का भंडार है, उसमें से कोई सारा का सारा ज्ञान उठा ले तो भी संपूर्ण बचता है। तो उठाने वाला कोई होगा या नहीं होगा? तो मनुष्य सृष्टि का जो हीरो पार्टधारी है, मनुष्य सृष्टि का जो बाप कहा जाता है, सब धर्म वालों ने उसे स्वीकारा है, आदम मुसलमानों में, एडम क्रिश्चियंस में, आदिनाथ जैनियों में, और आदिदेव, त्वम आदिदेव है पुरुष है पुराण हिंदुओं में, सभी धर्म वालों ने माना है उसे, लेकिन जाना जाना किसी ने नहीं। तो फॉलो करने का सवाल ही नहीं। फिर उसे कैसे जाना जाएगा? कौन उसकी पहचान देगा? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट पहचान देंगे, तो कौन पहचान देगा? है? आत्माओं का बाप ही है। जो बाप परंपरा चलाता है, हिस्ट्री में परंपरा है कि राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को राज्य दिया, यथा राजा तथा प्रजा ने दिया। तो ये परंपरा किसने चलाई, कब से चलाई? शिव बाप ने चलाई, आत्माओं के बाप ने, सुप्रीम गॉड फादर ने। जब इस सृष्टि पर आता है तो मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा को पकड़ता है, फॉलो करता है, आशिक बनकर उसके पीछे भागता है। इसलिए ब्रह्म वाक्य है, उत्तर कालदर्शी बाप भारत पर आशिक हुआ है। इस पर जड़ जमीन पर आशिक हुआ है, है? अरे चैतन्य आत्मा है या जड़ आत्मा है? तो चैतन्य चैतन्य पर ही आशिक होगा ना, तो वो चैतन्य आत्मा मनुष्य आत्मा तो सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रत्येक सीन में हीरो का पार्ट बजाती है। वो हीरो पार्टधारी जैसे हीरा सदा प्रकाशित रहता है, ऐसे ही वो सदैव प्रकाशित रहने वाला है। अगर सदा प्रकाशित रहने वाला है तो उसकी यादगार सदैव हीरे के रूप में बनाई गई होगी, कि पत्थर के रूप में भी बनाई गई होगी, है? सदा हीरे। भक्ति मार्ग में जब से द्वैतवादी द्वापर युग शुरू हुआ तो सोमनाथ मंदिर जो पहला बना उसमें लिंग में हीरा दिखाया गया। वो हीरा पत्थर था या नहीं? इसका मतलब देखने में तो हीरा था जो सदा प्रकाशित होता है, निविड़ अंधकार में भी रख दो तो भी रोशनी मारता है। ये बात दूसरी है कि हीरे के ऊपर भी कभी धूल जम सकती है या नहीं जम सकती? जब धूल जम जाती है तो उसकी रोशनी दिखाई नहीं पड़ती। धूल माने देह अभिमानी की धूल जम जाती है। तो वो हीरा कौन आत्मा है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम है हीरो पाटधारी के रूप में? जो ब्रह्म वाक्य में बता दिया इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है। शिव शब्द बोला माना ज्योति बिंदु रूप है, सोमनाथ मंदिर में जो भी लिंग रूप था, बिंदु रूप था या नहीं था? है, बिंदु भी था और सिर्फ बिंदु रूप ही है या उसका बड़ा रूप भी है? जो ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, छोटे रूप में याद नहीं कर सकते हो तो बड़े साकार रूप को ही याद करो। तो दोनों का मेल है, निराकार का भी और साकार का भी। लेकिन कौन से निराकार का रूप मेल है? जो आत्माओं का बाप शिव, उसका मेल है। आत्माओं का बाप शिव इस सृष्टि पर सदा काल होता है। वो तो सदा काल नहीं होता, वो तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सिर्फ एक युग कहा जाता है, पुरुषोत्तम संगम युग, जिसकी यादगार में पुरुषोत्तम मास मनाते हैं हर चौथी वर्ष, माने चार युगों के बाद पुरुषोत्तम युग आता है, जहां त्रिकालदर्शी बाप शिव आकर के पुरुषों को नंबरवार पुरुष घोषित कर देता है। 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं अपने अपने पार्ट को पहचान लेती हैं, आगे या पीछे। हर आत्मा को अपने पार्ट की पहचान हो जाती है और अब्बल नंबर आत्मा को भी अपने पार्ट की पहचान हो जाती है। तो अब्बल नंबर कैसे बना? अरे अब्बल नंबर बना माना 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में उसने बाप की प्रॉपर्टी निराकारी ज्ञान को पहले उठाया। और संपूर्ण रूप में उठाया। जब तक उसने संपूर्ण रूप से नहीं उठा पाया तब तक किसी ने भी नहीं उठा पाया। मनुष्य सृष्टि का जो पहला पत्ता सतयुग के आदि का 16 कला संपूर्ण कृष्ण गाया हुआ है। हे कृष्ण नारायण वासुदेव कहा जाता है कीर्तन में। वो कृष्ण वाली आत्मा भी क्या है? है रचना है या रचयिता है? रचना और रचयिता साकार में होते हैं या निराकार में होते हैं? तो सतयुग के आदि पत्ते कृष्ण पत्ता की आत्मा जब संगम युग में रिहर्सल होती है चारों युगों की, तो वो आत्मा जो ईश्वरीय ज्ञान लेने वाले हैं, ईश्वर से डायरेक्ट ज्ञान लेने वाले, ईश्वर के डायरेक्ट बच्चे, सन्मुख ज्ञान सुनने वाले, उन बच्चों के बीच में कौन सी आत्मा है जो इस ज्ञान को पहले पहले बुद्धि में धारण कर लेती है? है वही मनुष्य सृष्टि का बाप, वही ज्ञान का बीज धारण करने वाला मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसे 500-700 करोड़ कलयुग के अंत की जो प्रजा है मनुष्य मात्र की, उनका बाप कहा जाता है, जिस बाप से वर्षा प्रैक्टिकल में मिलता है, क्योंकि बाप प्रैक्टिकल में है या सदैव पर्दे के पीछे रह करके डायरेक्टर का पार्ट में जाने वाला है। निराकार आत्माओं का निराकार बाप डायरेक्टर है रंगमंच का, जो शूटिंग पीरियड में सदैव पर्दे के पीछे रह करके पार्ट बजाता है, उसको इन आंखों से कोई नहीं देख सकता, तो देख भी नहीं पाता तो स्वर्ग जो साकार गाया हुआ है उसका साकार वर्षा कैसे लेगा? नहीं लेगा। बाप वर्षा तभी देता है जब उस वर्षे की प्रॉपर्टी को बाप ने कमाया हो पुरुषार्थ करके। अगर बाप के पास प्रॉपर्टी नहीं है तो बच्चों को भी नहीं दे सकता। और वो मनुष्य सृष्टि का बाप बेहद का बाप है या क्राइस्ट की तरह 200-500 करोड़ क्रिश्चियंस का बाप है, हद का बाप है, बेहद का बाप है? तो बेहद का बाप बेहद का वर्षा देगा या हद का वर्षा देगा? बेहद का वर्षा देगा। वो बेहद का वर्षा है पहले पहले क्या ज्ञान, किस बात का ज्ञान? सबसे बड़ा ज्ञान है किस बात का ज्ञान? सबसे बड़ा ज्ञान अगर कहें आत्मा का ज्ञान, आत्मा ज्योति बिंदु, तो इतना कहने मात्र से हर आत्मा को अपनी आत्मा के जन्म जन्मांतर या श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जन्म के पार्ट की अनुभूति हो जाती है? हो जाती है नहीं? तो मैं आत्मा ज्योति बिंदु, तुम आत्मा ज्योति बिंदु, मनुष्य मात्र ज्योति बिंदु आत्मा है। सिर्फ बेसिक ज्ञान लेने से आत्मा का ज्ञान परिपूर्ण नहीं होता, क्योंकि बेसिक ज्ञान तो घर में माता भी दे लेती है, है? देती है, लेकिन हायर अथॉरिटी का ये ज्ञान है, हाईएस्ट ज्ञान है, माता बाप के मुकाबले जड़त्वमयी बुद्धि वाली होती है या चैतन्य होती है? जड़त्वमयी बुद्धि वाली होती है। इसलिए माता को आधीन होना पड़ता है। किसके प्रति? बाप के प्रति, पति के प्रति आधीन होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पति पति बनता ही तब है। सत्य को धारण करने वाला पति पति बनता ही तब है। सच्चा पति जब धारण करने वाली धरणी माता को अपने जीवन का सारा सत्व, सारी प्रॉपर्टी, सारी कमाई, एड़ी से लो लेकर के चोटी तक की सारी शक्ति उस धरणी में तिरोहित कर दे, आरोपित कर दे, क्या सच्चाई से पति है, तन की एड़ी चोटी की पावर लगा करके अपने सत्व को खुद धारण नहीं कर सकता, लेकिन धरणी माता में तिरोहित कर देता है। तो तन की शक्ति तो तिरोहित की, लेकिन धन भी तो होता है, है? धन अपनी मुट्ठी में रखे और पत्नी को न दे, परिवार चलाने के लिए, तो सच्चा पति है? पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाए, है? कहने के लिए हो जाता है कि अर्धांगिनी है, लेकिन सब कुछ अपनी मुट्ठी में रखा तो अर्धांगिनी कहेगी। तो भारतीय परंपरा क्या है, अर्धांगिनी बनाने की है या संपूर्ण अपनी मुट्ठी में रखने का है? अर्धांगिनी बना की। इसलिए भारतीय परंपरा में जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है प्रैक्टिकल में, वो अर्धनारी शोगिरी के रूप में दिखाया गया है, आधी नारी और आधा पुरुष। नारी रूप में माता जरूर चाहिए परिवार की पालना करने के लिए, तो वो है परम ब्रह्म, परे ते परे स्टेज में रहने वाली माता, जो परम ब्रह्म क्या नियम लेकर चलता है, वसुदेव कुटुंबकम, सारी वसुधा के मनुष्य मात्र मेरा कुटुंब है, ऐसी भावना लेकर चलता है। कोई प्रकार का पक्षपात नहीं, और सारे कुटुंब सारे परिवार की पालना की पावर इसके हाथ में सौंपता है, है परम ब्रह्म, जिसको नाम दिया, टाइटल दिया काम कराने के लिए। क्या काम कराने के लिए? संपूर्ण जो भी विश्व का परिवार है मनुष्य मात्र का, सब की पालना करने के लिए उस परम ब्रह्म को निमित्त बनाया। और उसमें अपनी सारी शक्ति तिरोहित कर दी। कि बच्चों में और बच्चियों में तिरोहित करता है, हैं? इसमें तिरोहित करता है परम ब्रह्म। लेकिन ये परम ब्रह्म काम लेने के लिए टाइटल है या वास्तव में वो परम ब्रह्म के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा मनुष्य सृष्टि का पुरुष है, वो प्रजापिता है, पिता है, पुरुष रूप है, परंतु उसको काम लेने के लिए टाइटल दे दिया परम ब्रह्म का। सारी दुनिया का जो भी परिवार है विश्व धर्मों के फॉलो करने वाली मनुष्य आत्माओं का, उन सब की पालना करना है। क्या आदि में परम ब्रह्म, तो अंत में क्या पार्ट बजाता है? नहीं, जगन्नाथ, सारे जगत का नाथ, स्वामी। तो बोला, मैं जब आता हूं तो जिस तन में भी प्रवेश करता हूं, चाहे दादा लेखराज ब्रह्मा ही क्यों न हो, क्या नाम देता हूं? ब्रह्मा नाम देता हूं। तो ब्रह्मा नंबर वाले हैं, कोई पहले नंबर का भी ब्रह्मा बन जाता है। जो ब्रह्मा सो विष्णु, अव्वल नंबर का ब्रह्मा तो अव्वल नंबर का विष्णु। नहीं तो नंबरवार भुजाओं के रूप में विष्णु में देखा जाता है। कोई ऊपर की भुजाएं, कोई नीचे की भुजाएं, कोई दाईं ओर की भुजाएं, कोई बाईं ओर की भुजाएं, नंबरवार भुजाएं हैं। भुजाएं स्वयं चलती हैं या उनको चलाने वाला कोई ऊपर है? हाँ, भुजाओं से भी ऊपर आत्मा है। तो विष्णु में वो कौन सी आत्मा है जो चारों भुजाओं रूपी चैतन्य आत्माओं को चलाती है? है कौन? वही परमात्मा इति उदाहरण है, जिसे परमात्मा कहा जाता है। इस मनुष्य सृष्टि में परम पद धरे, जिससे ऊंचा पद किसी का इस संसार में होता ही नहीं। वो परम पद धरे परम ब्रह्म परमात्मा एक ही है। क्या? जिसमें परम पुरुष विराजमान होकर पार्ट बजाता है। क्या करता है परम पुरुष? अरे परम पुरुष का क्या पार्ट है जो परम पुरुष कहा जाता है? उसके अंदर जो भी पौरुष की शक्ति है, सत्व है, वो माता में तिरोहित करता है। अहम बीज प्रदपिता, मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूं। कैसा पिता? ज्ञान का बीज बोता हूं। ज्ञान का बीज बोता हूं, किसमें बोता हूं? मद्योनि परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। मेरी योनि रूपा माता परम ब्रह्म है, उसमें मैं ज्ञान का बीज डालता हूँ। अरे परम ब्रह्म तो परम धाम को कहा जाता है, इस सृष्टि पर परम धाम कहाँ से आ गया है? बोला कि मैं जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता हूँ तो तुम बच्चे नंबर वार परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेते हो, एक साथ उतारते हो या नंबर वार उतारते हो? तो कोई तो होगा जो अव्वल नंबर में उतारता होगा। अपने अंदर ही परम धाम की स्मृति में स्थिर हो जाता होगा। तो बोला परम धाम हम आत्माओं का घर है, घर को याद करो, उस घर में रहने वाले जो पिता है मुखिया, घर में पिता मुखिया होता है ना, तो बाप को याद करो और क्या याद करो, स्वर्ग को याद करो, माना वर्षे को याद करो, जीवन मुक्ति का वर्षा। क्या जीवन में भी रहे और दुख दर्दों से जन्म जरा बुढ़ापा और मृत्यु तीनों के भय से मुक्त हो जाए, उसको कहेंगे जीवन मुक्त। अब बात तीन को याद करें कि एक को याद करें? तीन को तो याद नहीं कहेंगे, आत्मा अलग चीज, आत्मा के रहने का रहस्य अलग चीज और आत्मा सदाकाल परम ब्रह्म जिसे शांति धाम कहा जाता है, सुप्रीम अबोड कहा जाता है, मुसलमान जिसे अर्श कहते हैं, वो अर्श अलग चीज, राइस का स्थान अलग चीज, उसमें रहने वाला अलग बात, और वो सदैव अर्श में ही रहता है, फर्श में कभी नहीं आता। आता है या नहीं आता है? आता है। तो वो अर्श में रहने वाला अपने अंदर ही अर्श का निर्माण करने वाला, अपने अंदर ही परम धाम को उतार लेने वाला सदा काल नहीं रहता। सदा काल रहता है नहीं, शांति धाम को छोड़कर कहाँ आता है? सुखधाम में आता है। मनुष्य सृष्टि का बाप है ना, है? बाप है तो बाप बच्चों के लिए घर नहीं बनाता है? घर बनाता है ना, बच्चों के लिए घर क्यों बनाता है? सुख से रहें, तो सुखदाम बनाएगा या दुखदाम बनाएगा? बेहद का बाप है तो बेहद का घर बनाता है सुखदाम। क्या सुखदाम साकार है या निराकार? तो बनाने वाला साकार होगा या निराकार होगा? साकार। वो साकार मनुष्य सृष्टि का बाप साकार धाम की रचना करता है जिसे सुखधाम कहा जाता है, सत्य धाम कहा जाता है। क्योंकि जो सत्य बन जाता है 100%, कैसा सत्य? बाप समान सत्य, आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल गॉड फादर। जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर डायरेक्टर के रूप में आते हैं तो विरुद्ध लेकर के आते हैं, मैं तुम बच्चों को आप समान बनाकर जाऊंगा। इस रूप में अपने समान, तुम सभी बच्चे इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भले जान लेते हो कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, लेकिन ज्योति बिंदु में टिक जाते हो क्या? है जानकारी होते ही टिक जाते हो? नहीं, कि टाइम लगता है। है पहचान क्या बताई? निराकारी ज्योति बिंदु रूप में टिकने की पहचान बताई, याद है? है धीरे धीरे बोलेंगे, जोर से बोले जैसे घर में बोलते हैं। है आत्मा रूपी कहा पहचान है कि आत्मा निराकारी बन गई, बता दिया। एक सेकंड में आकारी, एक सेकंड में निराकारी, एक सेकंड में साकारी। और ये भी बता दिया, सन 73 में ही बता दिया कि घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी मनुष्य तन के द्वारा प्रत्यक्ष हो ही जावेंगे, और अभी भी प्रत्यक्ष हो रहे हैं। उसका मतलब उस समय से ही, पहले से ही हो सकता है। वो आत्मा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज में टिक जाती है। जिसकी पहचान बताई, क्या बताई? अभी बताया है, एक सेकंड में आकारी, एक सेकंड में निराकारी, एक सेकंड में साकारी। माना जब साकार इंद्रियों से पार्ट बजा रहा है तो जरूरत पड़े तो एक सेकंड में साकारी इंद्रियों की आसक्ति छोड़ एक ही सेकंड में आकारी बन जाए, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में स्थिर हो जाए। और एक सेकंड में निराकारी, नो संकल्प पैताल, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, कोई संकल्प न चले, मनन चिंतन मंथन भी बंद। ऐसा परिवर्तन करने में एक एक सेकंड का अंतर पड़े। तो पहचान भी बता दी क्या, और ये भी बता दिया कि तुम ब्राह्मणों के बीच एक ही मनुष्य सृष्टि का बाप के रूप में पार्टधारी आत्मा है जो साकारी से आकारी, क्या आदि में साकारी था, साकारी से क्या बना, आकारी बना, आकारी से निराकारी, आकारी से निराकारी, फिर साकार बनेगा। माना कब साकारी था है, आदि में साकारी था तो किस नाम रूप से साकारी था है, अरे अभी अभी तो बताया माताएं साकारी होती हैं, साकार देह का भान ज्यादा रहता है या नागा बाबाओं की तरह जब चाहे नंगी हो जाए, देह भान, देह का भान त्याग दें, ऐसे माताएं कन्याएं कर सकती हैं क्या, नहीं कर सकती। देह का स्पेशल अंग ऐसा है कि वो निराकारी नहीं बन सकते, पुरुष निराकारी बन जाते हैं। जैनियों में दिगंबर स्वामी कहे जाते हैं, होते हैं कि नहीं, हिंदुओं में नागा बाबा कहे जाते हैं, ये दो ही धर्म ऐसे हैं जो निराकारी स्टेज में स्थिर होने वाले हैं, पुरुष रूप में पुरुषार्थ करते समय पुरुष रूप है तो निराकारी बन जाते हैं, अगर स्त्री चोला है तो निराकारी नहीं बनते। तो बाप तो बता दिया कि बाप कौन है, साकारी था आदि में, क्या अविनाशी रुद्र के रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड की आरंभ में क्या था, साकारी था, फिर क्या बना, साकारी से आकारी बन गया। मनन चिंतन मंथन वाला बन गया। जब मनन चिंतन मंथन करने लगती है मन बुद्धि रूपी आत्मा, तो साकार दुनिया, साकारी देह, देह के संबंधी, देह के पदार्थों को याद करती है तो साकारी, और ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का काम क्या है, मनन चिंतन मंथन करना और दूसरों को भी इस योग्य बनाना, तो उसे कहेंगे आकारी। इसे दुनिया का चिंतन नहीं, दुनिया के संबंधों का चिंतन नहीं, देह का चिंतन नहीं, क्योंकि दुनिया के पदार्थ जो हैं पांच तत्वों से बने हुए, उनका चिंतन नहीं। पक्का आध्यात्मवादी अधि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा। आत्मा के अंदर क्या है, क्या है आत्मा की हिस्ट्री, उसके बारे में मनन चिंतन मंथन करने वाला। पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश ये जो पंचभूत हैं, इस पंचभूतों के बारे में मनन चिंतन मंथन करने वाला नहीं, भौतिकवादी नहीं, आध्यात्मवादी बने। तो कहेंगे आकारी बना, और देह रहते रहते आकारी बना जा सकता है या शरीर छोड़ करके ही आकारी बना जा सकता है। देह रहते रहते आकारी बने वो बड़ी बात, या देह छूट गई फिर मजबूरी से सूक्ष्म शरीर धारण किया वो विशेष बात, देह के रहते रहते आकारी स्टेज धारण कर ले, सूक्ष्म स्टेज धारण कर ले मन बुद्धि की, उसको कहा जाता है फरिश्ता। क्या फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं मन बुद्धि का, आत्मा का। जिन फरिश्तों का गायन सभी धर्मों में है, भारत में उनको देवता कहा जाता है, अष्टदेव कहा जाता है, और विधर्मियों में, विदेशियों में उनको फरिश्ता कहते हैं। कुरान में लिखा हुआ है क्या, तुम क्या समझे कि वो खुदा क्या है? खुदा भोर का तारा है, सुबह का तारा, और उस खुदा के तख्त को उठाने वाले आठ फरिश्ते हैं, जिनका फर्श की दुनिया वालों से कोई कोई रिश्ता नहीं रहता। तो सवाल ये है, फरिश्तों में और भूत में क्या अंतर है? भूत प्रेत जो इविल सोल्स होती हैं, दुखदाई होती है, क्या अंतर होता है? फरिश्ते दुखदाई नहीं होते और भूत प्रेत दुखदाई होते, क्योंकि अंत समय में जब उनकी मृत्यु होती है शरीर से, तो दुखमयी स्टेज में मृत्यु होती है, अंत मते सुगते, अकाले मृत्यु होती है तो दुख की स्टेज में मृत्यु होती है। एक्सीडेंट से मृत्यु होती है, अचानक मृत्यु हो जाती है। तो उनको भूत प्रेत का जन्म मिलता है, परंतु उनमें भी दो प्रकार की आत्माएं हैं। सबसे अच्छी मृत्यु कौन सी बताई इस दुनिया में? हार्ट फेल, एक सेकंड में हार्ट फेल हुआ और ये गया, कोई दुख अनुभव हुआ नहीं हुआ। तो दादा लेखराज ब्रह्मा का क्या हुआ? हार्ट फेल हुआ। अच्छी मृत्यु हुई या खराब मृत्यु हुई? अच्छी मृत्यु हुई, अचानक तो हुई। तो वो आत्मा शरीर साकार न होते हुए भी आकारी स्टेज से फरिश्ते का ही पार्ट बजाने वाली आत्मा है, जिसे भारत में भारतवासी कहते हैं, कैसे सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा, क्या नाम देते हैं? अरे भूल गए, भूत प्रेतों के अलग अलग नाम होते हैं, नहीं होते? अलग अलग नाम होते हैं, तो क्या कहते हैं? ब्रह्म राक्षस। क्या कहते हैं? ब्रह्म राक्षस। और कौन सा वृक्ष है जिस पर मान्यता है कि उस वृक्ष पर विशेष रूप में ब्रह्म राक्षस निवास करता है? है पीपल का वृक्ष। क्यों बरगद का वृक्ष क्यों नहीं है? बरगद का वृक्ष का जो पत्ता है वो मोटी डंडी वाला होता है और छोटी डंडी वाला होता है। क्या डंडी छोटी और मोटी, तो ज्यादा हिलेगा नहीं? और पीपल का पत्ता लंबी डंडी वाला होता है और पतली डंडी वाला होता है, तो थोड़ा सा भी हवा का झोंका आएगा हिलेगा जरूर। इसलिए शास्त्रों में यादगार दिखाई है। क्या? क्योंकि शास्त्रकार जो है वो संगम युग की तो बात जानते ही नहीं है? वो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चार युगों को जानते हैं, बाकी जो शूटिंग का पीरियड है, डायरेक्टर के पार्ट बजाने का काल है, उसको वो जानते ही नहीं। तो उन्होंने सतयुग के कृष्ण के बारे में बता दिया कि सतयुग का कृष्ण जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर गर्भ में होता है, कौन से गर्भ में होता होगा? ज्ञान गर्भ में। तो वो बच्चा पीपल के पत्ते पर पड़ा हुआ है। कहा? पीपल के पत्ते पर गर्भ महल में पड़ा हुआ है। गर्भ भी दिखाते हैं कि नहीं? गोले के अंदर दिखाते हैं ना। कौन सा गर्भ है? ज्ञान गर्भ में बड़े आराम से अंगूठा चूसता हुआ दिखाते हैं, चाहे पांव का अंगूठा हो चाहे हाथ का अंगूठा हो। क्यों? क्योंकि शास्त्रकारों ने, चित्रकारों ने, मूर्तिकारों ने भाव भंगिमा के आधार पर आत्माएं जो नंबरवार पार्टधारी हैं, तो छोटा पार्ट बजाने वाली है या बेहद के बाप के समान पार्ट बजाने वाली होगी? है छोटा पार्ट बजाती, इसलिए उनको अंगूठाकार शालिग्राम दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? अंगूठाकार शालिग्राम। और जो अंगूठाकार शालिग्राम आत्मा को दिखाया है, उनके बाप शिवलिंग को बड़ा दिखा दिया। इसलिए प्राचीन काल में जो भी रुद्रयज्ञ रचते थे, जितना बड़ा सेठ होगा उतने लाख लाख शालिग्राम बनवाता था। कोई एक लाख, कोई दो लाख, कोई बहुत बड़ा सेठ होगा तो तीन चार लाख भी शालिग्राम बनाता था। सुबह को बनाता और शाम को बिगाड़ देता। वो छोटे छोटे शालिग्राम, छोटा छोटा पार्ट बजाने वाली आत्माओं की यादगार हैं, जो बाप के छोटे छोटे बच्चे हैं नंबरवार बच्चे क्या नंबरवार पार्टधारी आत्मा है जो सुप्रीम सोल बाप का बड़े से बड़ा बच्चा है वो नंबर बार में अव्वल नंबर का हीरो पार्टधारी तो उससे भी बड़ा कोई पार्टधारी होता है क्या है नहीं होता डायरेक्टर होता है लेकिन वो तो रंगमंच पर पार्ट बजाता ही नहीं तो जो बड़ा पार्टधारी है उस बड़े पार्टधारी को बड़े रूप में कैसे दिखाएं तो बड़ा लिंग बनाई दिया और सब बड़े लिंग के आसपास पुराने मंदिरों में गोल गोल शालिग्राम पड़े रहते हैं और शिव के मंदिर में जो दीवाल है उस दीवाल में देवताओं को दिखाया जाता है तो शालिग्राम छोटा पार्ट बजाने वाले नंबरवार जिनमें मुख्य मुख्य कौन है हाँ उनमें भी जो अष्टदेव आठ दिग्पाल गाए हुए हैं जब वसुदेव कुटुंबकम की रचना हुई तो सारी वसुधा को कंट्रोल में करने वाले पालना करने वाले आठ दिशाओं को पालने वाले आठ दिग्पाल वो अष्टदेव हैं जो अष्टदेव आठ धर्म जो आस्तिक हैं ईश्वर को मानने वाले उनके पूर्व जा क्या उन सभी धर्मों में धर्मावलंबियों में सबसे पहले जन्म लेने वाले उन धर्मों के तो सबके पूर्वज होंगे तो सबसे जास्ती सात्विक होंगे या तामसी होंगे सबसे ज्यादा सात्विक ऐसे सात्विक जो सत्य बाप का 84 जन्मों में सहयोग करने वाले सहयोगी आत्माएं हैं भले आठ दिशाओं की पालना करने वाले नहीं रहते फिर भी विश्व पिता के सहयोगी बनकर रहते जो अष्टदेवों के रूप में आठ मूर्तियों के रूप में दक्षिण भारत में खास बनाए जाते हैं क्यों नॉर्थ इंडिया में इतनी मान्यता क्यों नहीं है कि उनकी मूर्तियां बनाई जाएं मंदिर बनाए जाएं दक्षिण भारत में ही मूर्तियां और मंदिर क्यों बनाए जाते हैं क्योंकि उन धर्मों के जो पूर्वज हैं वो पूर्व में जन्म लेने वाली आठ आत्माएं प्रैक्टिकल में साबित कर देती हैं कि उन्होंने ही बाप को पहले पहचाना है और उनके फॉलोअर्स ने कोई ने भी नहीं पहचाना मान लो क्रिश्चियन धर्म का या इस्लाम धर्म का धर्म पिता हो या बौद्ध धर्म का धर्म पिता हो, तो वो धर्म पिता बौद्ध धर्म की साकार रूप में माता है या पिता है? है माता है। और मूल रूप में वो माता के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा भारतवासी है या विदेशी है? भारतवासी। जैसे बौद्ध धर्म को ले लो, बौद्ध धर्म में जो सिद्धार्थ नाम का व्यक्ति हुआ जिसमें बुद्ध ने प्रवेश किया और वो शरीरधारी महात्मा बुद्ध कहलाया, वो शरीरधारी आत्मा बौद्ध धर्म की माता है या बीज रूप सूक्ष्म पिता है? माता है। तो माता भी वो आत्मा जो बौद्ध धर्म की माता बनती है वो भी बाद में है, जब मनुष्य सृष्टि रची गई उसका नंबर बाद में है, तो उस माता का भी कोई जन्म देने वाला या उस धर्म पिता को जन्म देने वाला बुद्ध को जन्म देने वाले का मतलब है वो धर्म पिता ग्रैंड फादर को पहचाने। क्या? किसको पहचाने? ग्रैंड फादर को पहचाने। तो उस ग्रैंड फादर को पहचान देने वाला माने सिद्धार्थ वाली आत्मा को भी पहचान देने वाला तीसरा सतयुग का जो नारायण है उसको भी पहचान देने वाला कौन? सिद्धार्थ का बाप, जो द्वापर युग में का बाप बनता है, वो उस धर्म का ऊंचे से ऊंचा हुआ या नहीं हुआ? है? क्योंकि वो तो संगम युग से ही बाप को पहचानता है, मनुष्य सृष्टि के बाप को पहचानता भी है, मानता भी है। लेकिन जो बौद्ध धर्म का धर्म पिता, द्वैतवादी धर्म पिता द्वापर में आता है, द्वैतवादी धर्म फैलाता है, भाषा फैलाता है, राज्य बनाता है, वो तो प्रजापिता को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्यों द्वापर युग से आता है आठ कला वाले युग में? ऊपर से आने वाला धर्म पिता वो बीज रूप निराकार वो द्वापर में आता है, सतयुग के आदि में त्रेता में नहीं आता। ऐसा क्यों?
ज्ञान पूरा
पूरा ज्ञान तो प्रजापिता उठाता है, है? क्यों नहीं उठाता? अरे द्वापर में आने के बाद उन धर्म पिताओं ने निराकार को मान्यता दी है जन्म जन्मांतर, या किसी साकार भगवान को मान्यता दी है? अगर भगवान माना भी भगवान की तरह है तो बुद्ध को माना होगा, इस सृष्टि में और किसी को ऊंच नहीं माना, आदम को भी नहीं माना, एडम को भी नहीं माना, आदिनाथ को भी नहीं माना। माना किसी को? क्यों नहीं माना? क्योंकि अनेक जन्मों के उनके देहवान के संस्कार हैं। कोई भी धर्म पिता जिस समय भी आया, उस काल में, धर्म पिता के जीवन काल में, इस संसार में कोई मनुष्य मात्र पैदा नहीं हुआ जो उसका मुकाबला करे।
कोई हुआ
है तो अहंकार आएगा कि नहीं? मैं ही मैं हूँ, इसको कहते हैं देह अहंकार। मैं क्या वो मैं को समझता है धर्मपिता कि देह को ही मैं समझता है? तो वो देह अभिमानी इसलिए बनते हैं कि जब उन धर्म पिताओं का बाप, मनुष्य सृष्टि का बाप, जो ग्रैंड फादर कहा जाता है, क्योंकि तो धर्म पिताएं तो सिर्फ ग्रेट फादर्स और उनका बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, जो कहा जाता है उसको वो देह अहंकार के कारण मान्यता नहीं देते। क्या अंदर से ईर्ष्या आती है, अंदर से देह अहंकार मुकाबला करता है। दर्शन करने आएंगे, क्या देखेंगे, लेकिन समर्पित समर्पण नहीं करेंगे, वापस चले जाएंगे अपने देश में, अपना संगठन बनाएंगे और जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसका मुकाबला करेंगे या नहीं करेंगे? अपने सभी फॉलोअर्स को उकसाएंगे विरोध करने के लिए, अपने देह अहंकार की सारी ताकत लगाएंगे और विरोध करेंगे। एक धर्म पिता की बात नहीं है, सभी धर्म पिताएं जो देहधारी हुए हैं द्वापर युग से, द्वैतवाद को फैलाने वाले, वो सब विरोधी हैं संपूर्ण आत्मिक स्थिति के। क्या देह को ही मान्यता देते हैं? संपूर्ण आत्मा क्या होती है इसको मान्यता नहीं देते। तो उनके धर्म में, उनके धर्म के जो भी धर्मावलंबी हैं, फॉलोअर्स हैं, उन आत्माओं के बीच कोई आत्मा है जो उस धर्म का पूर्वज मानी जाती है? है? जो मुसलमानों में, क्रिश्चियंस में गाए जाते हैं आठ फरिश्ताओं के रूप में, हिंदुओं में फरिश्ताओं को मान्यता नहीं देते, सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेतों को मान्यता, देवताओं को मानते हैं। तो वो उनको देवता मानते हैं भारतवासी, देने वाले, क्या कोई से लेने की इच्छा नहीं करने वाले, चाहे किसी के धर्म को हो, ऐसे नहीं कि बौद्ध धर्म का पूर्वज है, तो दूसरे धर्मावलंबियों से घृणा करेगा? नहीं, कोई से भी घृणा नहीं करेगा, विश्व कल्याणकारी। विश्व कल्याण की भावना रखेगा, क्योंकि विश्व का जो पिता है उसको कभी भी क्रॉस करने वाले वो आठ नहीं है। जो बाप का रास्ता, सो बच्चों का रास्ता, तो वो आठ बीज हैं। और एक बाप, तो टोटल कितने रतन हुए? नौ रतन हुए। इसलिए नॉर्थ इंडिया में भी कोई अनुष्ठान करेंगे तो नौ ग्रहों की पूजा जरूर करेंगे। ये नवग्रह पूजन हर अनुष्ठान में होता है, और जो अनुष्ठानों की परंपरा पड़ी है, कर्मकांड है ना, अनुष्ठान क्या है? कर्मकांड। तो उन कर्मकांडों की परंपरा कहां से पड़ती है? है संगम युग में पड़ती है। अच्छी अच्छी परंपराएं, जो अच्छे से अच्छा है मनुष्य सृष्टि में पाठधारी, वो अच्छे से अच्छी परंपराएं डालने का निमित्त बनता है। क्यों? और दूसरे जो हैं, दूसरे धर्म के पूर्वज, वो 100% अच्छी परंपराएं डालेंगे या नंबरवार डालेंगे? वो नंबर डाल देते हैं। क्यों ऐसा, क्यों अंतर पड़ता है? हाँ, कि वो भी नंबरवार हैं, नंबर वन प्रत्यक्ष होने वाला अष्टदेव, नंबर दो में प्रत्यक्ष होने वाला अष्टदेव, तीन चार पांच छह सात आठ, आठ प्रत्यक्ष होते हैं जिस सन में, उस सन का नाम पड़ता है अट रह। क्या? कितने रहेंगे? आठ रहेंगे। रहेंगे माना, माने बाप के बच्चे बनकर प्रत्यक्ष होंगे। बाप का बच्चा बना माना निश्चय बुद्धि, और बाप के ऊपर से निश्चय टूट गया माने बच्चा मर गया, अनिश्चय बुद्धि। ये निश्चय अनिश्चय का चक्र, जन्म मृत्यु का चक्र, ये शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है संगम युग में। इसलिए बताया वो कौन सी आत्मा है जो सबसे जास्ती निश्चय अनिश्चय के चक्र में आती है? है अष्टदेव, और अष्टदेवों को फॉलो करने वाली सारी प्रजा संगम युग की, विश्व की बादशाही जब तैयार होती है, दुनिया की नई राजधानी जब तैयार होती है, तो उस नई राजधानी में, नई राजधानी का संगठन तैयार करने वाली कितनी आत्माएं बताई? आठ। छोटी सी छोटी राजधानी, संपूर्ण राजधानी या अधूरी राजधानी? संपूर्ण राजधानी की पहचान क्या बताइए, एक पहचान बताइए। ब्रह्म वाक्य है, वेदवाणी है मुरली में है। अरे भूल गए, जो करना है वो ही भूल जाते हैं। हम ब्राह्मणों का तो लक्ष्य रहना चाहिए क्या, वो लक्ष्य सदैव बुद्धि में बना रहे क्या, जो प्रैक्टिकल में दुनिया में देखा गया हिस्ट्री में, इस दुनिया में कौन सा धर्म है विधर्मियों के बीच में, विदेशियों के बीच में, क्योंकि विदेशी विधर्मी द्वापर युग से बहुत पावरफुल होने लगे, क्यों उनका हुजूम ढेर का ढेर इकट्ठा हो गया देहधारी धर्म पिताओं का। उन धर्मों में, उन धर्मों के संगठनों में कौन सा धर्म है जिसका संगठन इतना मजबूत रहा इसी में कि उन्होंने 2500 वर्ष में इस सृष्टि पर सबसे जास्ती लंबे समय तक राज्य किया है पूरी पृथ्वी पर है। मुसलमान नहीं, इस्लाम, वो बाद में इस्लाम, भले इस्लाम मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए,
मुसलमान
बन गए क्यों, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है और वेदवाणी भी बताती है कि कलयुग में संगठन की शक्ति सबसे जास्ती काम करती है। क्या अकेले ही आदमी बैठेंगे, स्मृति की डोरी योग बल के आधार पर एकाग्र करेंगे तो जल्दी टूट सकती है, और कई स्मृति की डोरियां इकट्ठी करके मोटी रस्सी बनाएंगे संगठित तो कोई भी तोड़ नहीं सकता। तो इस्लाम धर्म में, मुस्लिम धर्म में ये देखा गया कि सारे ही मुसलमानों की मन बुद्धि का वाइब्रेशन कहां भागता है, एक ही स्थान पर एक केंद्रित है और जीवन भर केंद्रित रहता है। ये संगठन की वाइब्रेशन की पावर उनको सारे संसार में, भले द्वैतवादी युग है, सारे संसार को कंट्रोल में किया। जिन आत्माओं ने सूर्यवंशी आत्माओं ने ज्ञान सूर्य के बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी नंबर बार हासिल की और प्रैक्टिकल में राजयोगी बने, जिस राजयोग की पावर से उन्होंने जन्म जन्मांतर की राजाई की शक्ति कंट्रोलिंग पावर धारण कर ली और जन्म जन्मांतर के राजाएं बने भी, परंतु द्वैतवादी द्वापर युग में आते आते, कलयुग के आते आते वो योग बल की शक्ति छीण हो गई। क्यों छीण हो गई है, क्योंकि भारत के जो राजाएं थे कलयुग में खास, वो इतने तामसी बन गए, विभिचारी बनने के कारण, कि वो आपस में लड़ने झगड़ने लगे। हिस्ट्री की बात है, आपस में लड़ झगड़ करके उन्होंने भारत का सत्यानाश कर दिया। संगठित नहीं हो पाए, यूनिटी नहीं आई भारत के राजाओं में। क्या कारण हुआ? क्योंकि प्योरिटी की यूनिटी हासिल नहीं की। ये बोर्ड गलत रखा हुआ है, एक से लेकर दो। हाँ, कुछ तो आगे बढ़े। ओ मुरली का टाइम, दो से तीन, चार, पांच, तीन घंटे का टाइम। ये पूर्णा है, उस घड़ी की सुई आगे बढ़ाई जा सकती है। तो बोर्ड गलत दिखाया है, है? कितना ज्यादा हो गया है? डेढ़ घंटा
चलो।